जैसे रवि जो आत्मा रही पड़ी है वो सबसे युद्ध कौन कर रहा है?
पुरुष जन जन्मांतर स्वभाव संस्कार के पुरुष है ना, इसलिए।
लेकिन जब मतलब
कि
लड़ाई लड़ने का काम
का पहला मां का आया
तो वो लोग
किसानों
की लड़ाई नहीं
है?
वो लोग
किसानों
की लड़ाई नहीं है।
तो जन जन मंदिर वरम सम्बन्धों पे कुमारी उन्हें ज्ञान लेने की भी दरकार कहाँ रहती है? ज्ञान का घिसना है क्षेत्र वाला की पुरुषों को पुरुष ही ज्यादा ज्ञान देते हैं।
और ये जो बीमारियाँ होती है इतनी भयंकर भयंकर वगैरह, इसको जो बीमारी होती है हमारे पूर्वजों में से कौन से कर्म होते हैं जो इतनी भयानक रूप से बीमारी?
सबसे भयंकर कर्म है एक स्त्री या एक पति को छोड़कर जो दूसरा पति या दूसरी स्त्री को पसंद है दिशा तो कैंसर भी हो जाए होता है। द्वापर स्त्री की ऐसा रहता है
विष्णु के अवतार में राम और कृष्ण एक आत्मा शास्त्र में बताते हैं कि विष्णु का ही अवतार है राम और कृष्ण, लेकिन ज्ञान में तो हमें मालूम है अलग अलग है।
अलग अलग हैं तो अलग अलग रहते हैं पार्ट में, अलग पार्ट बजाते हैं संग में
साथ में
होते हैं आपके अलग।
तो लेकिन बाहर वालों को दुनिया वालों को
ज्ञान समझाएंगे तभी तो उनकी समझ
पूरा एक्सप्लेन करना।
राम और कृष्ण को और कृष्ण का अवतार क्यों बताते हैं? राम अलग है सीता युग का, कृष्ण अलग है सतयुग का 16 कला संपूर्ण, तो और जिनको दोनों को मिला के विष्णु अवतार ऐसा विचार होता है क्या? विष्णु होता है क्या? चार हाथ हैं उसमें भी तो सहयोगी भुजाएं हैं ना, ये कृष्ण कृष्ण की सरस्वती या रथ, राम की सीता जगदम्बा, चारों हाथ में मिलकर के चार भुजाएं और उनको कंट्रोल करने वाला ऊपर सिर में आराम वाली तो विष्णु हो गए गलती विष्णु। अभी भी तो गलती पार्ट हो जा रहे हैं हम, प्रवेश नहीं है, है?
बाबा ने मुरली में बोला है फुल सरेंडर, भूख ना मरेंगे भूखे नहीं मरेंगे।
हाँ फुल सरेंडर होंगे प्रैक्टिकल में तब ना, प्रैक्टिकल में फुल सरेंडर बनते कहाँ?
सिली के चित्र में
आधी बात मानेंगे आधी बात नहीं मानेंगे, आधी से चलेंगे आधी से नहीं चलेंगे, मनमानी करने लग पड़ेंगे। सरेंडर होते समय देखेंगे कुछ और फिर बात में मना करते हम नहीं जाते हमें नहीं बाहर जाना, ट्रांसफर करो तो मना कर देंगे। तो फिर सरेंडर नहीं हुए ना सरेंडर, वो तो दुनिया को सरकार को दिखाने के लिए वो असली सरेंडर थोड़े ही, बहुत सरेंडर हो जाते हैं। प्रैक्टिकल में भी तन से धन से पूरा सरेंडर होना चाहिए ना, सरेंडर हो जाते हैं 1500 रुपये अपने पास रख के रहते हैं बताते ही नहीं। फिर
क्वेश्चन ये कि जो सीढ़ी के चित्र में बैंकर भारत है इसने तो अपना सब कुछ अर्पण करा के बावजूद भी उसे विदेशियों के सामने हाथ फैलाना पड़ा, विदेशियों ने विदेशियों ने
तो क्या सब कुछ अर्पण करेंगे जब है बेगर तो उसके पास मुझे क्या अर्पण करेंगे?
तो शिव बापू का शिव बापू पूरा भरोसा था, तो
शिव बापू का भरोसा, शिव बापू का जब भरोसा था तो कौन सा संत चल रहा था? कौन सा संत चल रहा था? अरे नारायण का जन्म कब हुआ?
1976
का नारायण वाली आत्मा, राम वाली आत्मा, तो उस समय फूल बैगर हुई होगी तभी तो प्रिंस बन के पैदा हुई।
उसने अपना अर्पण नहीं किया था,
फूल बैगर बन गई पहले ही दुनिया में, कुछ नहीं रहा हाथ में, तन से भी कमजोर, मन से भी कमजोर, धन से भी कमजोर, बैगर माने फूल बैगर, घर मकान जा रहा कुछ नहीं।
लक्ष्मी आएगी तो किससे ज्ञान सुनेगी? लक्ष्मी आएगी तो किससे ज्ञान सुनेगी?
जब शादी होती है कन्याओं की भारत में तो बोझ भरने के लिए कौन जाता है? तो जगन्नाथ सास हुई कि नहीं है? अब वैसे भी आपने तो सुना होगा माया बेटी ने पति से हाथ मिलाई, पति की मन जगदम्बा नहीं है, पृथ्वी सारी पृथ्वी सारा जगत।
एक जगदम्बा और पिता ने एक साथ प्रवेश का हुई थी 1936 में।
हिम्मत के लिए भी तो शब्द में थोड़ी इतनी हिम्मत होती है कि हर एक से बात कर सकते। जगदम्बा में हिम्मत आई, ब्रह्मा बाबा को भी हिम्मत नहीं पड़ी,
तो उनकी जो बहन थी उसको भी हिम्मत नहीं पड़ी डायरेक्ट बताने की, उसको हिम्मत पैदा होगी तो हिम्मत देने के लिए भी तो उसे प्रवेश करना पड़ेगा।
तो अभी तो बाबा ने बोला
कि उसके मुख से बोला ना, ये भी तो हो सकता है कोई आदमी बोले और आप सुने, आप सुनने के साथ समझ नहीं सकते,
समझ भी सकते हैं
तो। सुनने के साथ साथ कोई बात समझ में भी आती है ना, तो प्रजापिता ने सुना समझा भी और सुनने के साथ साथ जवाब भी दे दिया, लेकिन जगदम्बा नहीं समझ सकी क्योंकि बोल बोल करने की आदत है, ज्यादा बहिर्मुखी है, और वो दूसरी बात समझ गई।
बाबा तो अभी बोल रहे हैं कि जो निडर स्वभाव की होती है उसमें प्रवेशता की क्या आवश्यकता है?
कौन है निडर? कौन अपन को आत्मा निडर है, आत्मा की मृत्यु नहीं होगी तो आत्मा निडर है, कौन बन गया आत्मा?
अभी तो रामवर की आत्मा ही
है। अभी बन गई, फिर अगर बन गई निडर तो फिर काय के लिए भागती फिरती है? शंकर अगर निडर बन गया तो भस्म के डर से क्यों भागता फिरता, कभी इधर कभी उधर सारी दुनिया का चक्कर लगाया? निडर बनने वाले का चक्कर लगाने की क्या जरूरत? माना शंकर याद में रहता है ना, पुरुषार्थ कर रहा है ना, तो आत्मिक स्थिति में पूरा स्थित हो गया क्या? तो आत्मा बना ही नहीं तो निडर कैसे होगा?
ये कि नास्तिक से नास्तिक आत्मा भी कहेगी ओ गॉड फादर, तो इस बात का उजूरा कैसे मिलेगा और अगर मिलेगा तो कब मिलेगा?
मैंने नास्तिक है एटम बम बनाने वाली, वो अभी उनको विश्वास नहीं आत्मा परमात्मा स्वर्ग नरक के ऊपर, लेकिन जब उनके ऊपर सर के ऊपर आ पड़ेगी एटम बम गिरने वाले होंगे, दूसरे एटम बम छोड़ेंगे तो दूसरे भी छोड़ेंगे, छोड़ते छोड़ते उनके ऊपर ही आ जाएगी तो उन्हें डर लगेगा ना, तो बुलाएंगे नहीं, मानेंगे नहीं, आस्तिक नहीं बनेंगे।
मानेंगे तो फिर मतलब कि उनको कैसे किस टाइप का उसको फल मिलेगा उन लोगों को?
ज्ञान तो स्वीकार करेंगे, लास्ट में स्वीकार करेंगे, फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ, लास्ट में स्वीकार करेंगे तो झाड़ के क्षेत्र के ऊपर जो बैठा हुआ है उसको पहचान जाएंगे,
पहचान लेंगे।
वो जो बात सिखा रहा है मन बना भव, वो सिखाने वाला कौन है?
शिव बाबा
उसको मन है जो कहेगा मेरे मन में समा जाए, वो भी तो वही है ना जो गार्ड के ऊपर बैठा हुआ है, वही तो कह रहा है मेरे मन में समा जाए, तो उसके मन में क्या है? एक शिव बाबा की याद। तो जो दूसरे सुनने वाले हैं नास्तिक होंगे वो भी उसी स्टेज में टिकेंगे,
वो तो जानते हैं कि अणु से अणु रूप स्थूल में क्या होता है,
वो सस्टेन में टिक जाएंगे,
वो जल्दी टिकेंगे, वो ज्यादा पीछे है ना बुद्धि के।
अच्छा,
अच्छा कैसे मिल जाएगा? अच्छा कितना टाइम पुरुषार्थ किया?
कुछ भी नहीं।
फिर लंबे समय का पुरुषार्थ तो लंबी प्राप्ति, अंतिम समय का पुरुषार्थ तो थोड़ी प्राप्ति।
कि आधी छोड़ पूरे पूरे को धावे, आधी रहे ना पूरी पावे। अगर ऐसी हमारी स्थिति होगी तो हम कैसी शूटिंग कर रहे हैं?
अरे आधा मिलता है तो आधा ही ले लो। अरे क्या, अरे हम लास्ट में आए हैं, अब हम क्या प्राप्त करेंगे, बस हम तो यही ठीक है, ये समझना अच्छा है। अभी बहुत सी ब्रह्मा कुमारियाँ, कितनी सारी जिंदगी हमारी ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा के नीचे चलने में गुजर गई, अब हम दूसरी पार्टी हम नहीं जाएंगे, शंकर वंकर को हम क्या मानेंगे। तो जो आधा आधा मिल रहा है वो भी छोड़ दिया उन्होंने। फिर
वो लोग किस टाइप की शूटिंग करते हैं? वो लोग ऐसा करते हैं,
पूरा ही लेना चाहिए ना।
लक्ष्मी नारायण के लिए पपीते का उदाहरण देते हैं और राधा कृष्ण के लिए मोर मोरनी का मिसाल, राधा कृष्ण के लिए मोर मोरनी का। तो जब हम आत्माएं अपने शरीर को रिजेनरेट करेंगे तो क्या इसका कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल है जो देखने में आ सकता है?
वही तो पपीता दिए बताया, पपीता का पेड़ एक यहाँ गिरा है, एक दो किलोमीटर दूर खड़ा हुआ है, बीच में कोई पपीता के वृक्ष है ही नहीं, तो कहाँ से परा खींचता है?
नहीं वो तो नहीं, वैसा नहीं, जैसे
वैसा नहीं, वो पराग नहीं खींचता है।
हाँ खींचता है।
तो ऐसे ही ये बात क्या नाम वाइब्रेशन का पराग
है शरीर, मतलब कि जो हमारा शरीर दूसरा चेंज हो जाएगा
है?
जो शरीर चेंज होता है, जो बॉडी होती है चेंज होती है, रीजेनरेट होती है ना, रीजेनरेट होती है ना बॉडी।
पहले तो आत्मा चेंज होगी ना,
वाइब्रेशन
वाइब्रेशन आत्मा में से निकलेंगे या शरीर में से निकलेंगे?
आत्मा में से।
तो फिर आत्मा की वाइब्रेशन ऐसे तीखे होंगे और लक्ष्मी दूर रहेगी तो भी कैच कर लेगी, उसी वाइब्रेशन कैच करने से कृष्ण का जन्म होगा। वो चरती कला है, कृष्ण जो पैदा होगा वो देह का अंग आंख से सुख लेगा, तो वो उतरती कला होगी, वहां से लेकर के अब तक उतरती कला चल रही लगातार कलाएं हो गई सारी। देह से जो भी सुख लेंगे वो नीचे उतरने का होगा। सत्यु के आदि में ले रहे थे राधा कृष्ण देह का सुख, आंखों का सुख, तो वहां तो उतरने की गति नीचे थी, तो धीमी थी। द्वापर युग से बाद भ्रष्ट इंद्रियों से आ गए तो गति तीखी हो गई, बहुत तेजी से नीचे करने लगे। अब जो सुख ले रहे हैं मनुष्य वो तो बड़ी तेजी से नीचे गिरते चले जा रहे हैं, दिन दूनी रात चौगुनी संख्या बढ़ रही है दुनिया की, पॉपुलेशन जितनी ज्यादा बढ़ेगी मक्खी मच्छर मिसल हो जाएंगे ना, सारा वातावरण दुनिया का दूषित होता जा रहा है।
राजा कृष्ण को जब सतयुग की राजाई मिलेगी तब उनकी उम्र क्या होगी?
लगभग 60 साल।
सत्यु में 150 वर्ष आयु होती है?
सत्यु की आज में 150 से ये एवरेज एज बताइए।
अच्छा।
माना सत्यु के अंत में 125 वर्ष भी, तब तो त्रेता में 125 वर्ष शुरू होगा और सत्यु की आज में 150 से ऊपर भी।
अच्छा।
वो एवरेज एज बताइए, कोई फिक्स नहीं।
2000 का जो नया नोट निकला है उसके सामान्य कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट बताइए जिससे हम ये समझा सके दुनिया को कि इसी रथ में शिव की प्रविष्टा है।
हाँ, 76 के बारे में जो घोषणा हुई तो लक्ष्मी नारायण का जन्म 77 में होगा, तो बहुतों ने लिखा दिया शोभा व प्रत्यक्ष हुआ, जो 69 में अव्यक्त हो गया था वो 76 में एडवांस पार्टी के द्वारा प्रत्यक्ष हो गया। तो अब एक नया पॉइंट निकल आया, तो बच्चों को तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं, तो
तो 40 वर्ष किसके लिए?
राम वाली आत्मा के लिए।
राम वाली आत्मा, तो राम वाली आत्मा भगवान साबित हुई?
दुनिया वालों के सामने तो नहीं,
हमारे सामने भी कहाँ भगवान साबित हुई। पहले 76 में हम समझ बैठे थे कि हाँ शिव बाबा आया, लेकिन शिव बाबा नहीं आया ना। हजार का नोट, 2000 का तो था ही नहीं, अभी 2000 का निकल आया।
तो मतलब 2018 में तो पता चले गई, 2018 में तो ब्राह्मणों के सामने तो मालूम चले गए।
पता चलने वाले अभी भी पता कर सकते हैं, ऋषि मुनि सूरज निकलने से घंटे दो घंटे पहले ही जान लेते हैं कि अब सूरज निकलने वाला है। शुक्र तारा निकला, शुक्र तारा दिखाई पड़ रहा और कोई तारा दिखाई नहीं पड़ रहा, रात है तो उन्हें पता लग जाता है कि ये सूरज पूरब इस तरफ पूरब है जहाँ से शुक्र तारा निकला है, पहले ही पता लग जाता है। चलो भाई, आई तुम लोगों को भी मौका है, पूछ लो
बाबा,
नहीं तो बाद में तड़पड़ाते रहते।
वो सिविल वार के बारे में बताइए, सिविल वार,
सिविल वार हिंदुस्तान पाकिस्तान की सिविल वार ही तो है।
हाँ,
सिविल माने हिंदू मुसलमान, ये हिंदुस्तान में ही तो रहते थे।
हाँ,
तो हिंदुस्तान के ही वासी है ना, तो सिविल वार हो गई।
कितना युद्ध हो चुका, टोटल कितना युद्ध है
दुनिया में, कितने युद्ध हो चुके, लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान का सिविल वार ही कहा जाएगा। सिविल माने घर के संबंध।
तो
मैंने
ये बोले 3 है 4 है ऐसा कुछ।
क्या 3-4
युद्ध
तो दुनिया में 2500 साल में कितने हुए हैं?
अच्छा, वो
ढेर सारे युद्ध हुए हैं।
मेन जो है,
मैन तो महाभारत युद्ध ही है ना,
जैसे बोलते पहला विश्व युद्ध हो गया, दूसरा हो गया, तो तीसरा हो गया।
पहला विश्व युद्ध हुआ वो विश्व से संबंधित है, दूसरा विश्व युद्ध हुआ उसमें भी विश्व के दूसरे दूसरे देश कूद पड़े, लेकिन ये तीसरा विश्व युद्ध है, ये महाभारत युद्ध है, भारत से कनेक्टेड खास है।
अच्छा, तो ये तीसरा लास्ट
नहीं?
हाँ।
इसके बाद एटम बमों से लास्ट युद्ध होगा 5-7 रोज का।
अच्छा।
और उसमें सारा विश्व खलास हो जाएगा,
वो लास्ट होगा,
सभी धर्मखंड खत्म।
अच्छा।
बोलो बोलो, फिर तड़पड़ाते रहते हो कि हमारे प्रश्नों का समाधान नहीं होता, अपनी पूछ निकालो बाहर।
वो बाबा ब्रह्मा बाबा के लिए कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा ने इतना सहन किया कि जितना किसी ने सहन नहीं किया, तो ब्रह्मा बाबा वाली आत्मा ही धर्मराज बनके एक 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 का 100-100 गिनाती है, तो उसको क्या कैसे समझाएंगे?
कैसे समझाएंगे?
हाँ, तो हमने क्वेश्चन करते हैं।
हाँ।
क्लास में जो आते हैं ना वो पूछते हैं, तो उनको कैसे जवाब देना है?
जो देवता बनेगा वो सबसे बड़ा राक्षस नहीं बन सकता? बड़ा से बड़ा देवता बनेगा तो नीचे नहीं गिरेगा, तमो प्रधान नहीं बनेगा?
सहन शक्ति में तो उनका
मना, वो अभी जब शिव ने प्रवेश, उन्होंने थोड़ा ही सहन किया। सहन अगर उन्होंने किया होता 2500 वर्ष में, कभी सहन करके दिखा दिया होता? कभी दिखाया? फिर वो आत्मा सहन नहीं करती है, वो उसमें जो प्रवेश करता है वो ये पार्ट उसे भजवाता है।
तो जो बदला लेगी तो वो ये जो बदला लेगी धर्मराज बनके, तो वो ब्रह्मा वाली आत्मा लेगी।
सीधी सी बात है, उसने सहन किया ब्राह्मण परिवार के अंदर, इतने बड़ा ब्राह्मण परिवार, और सहन कराने वालों ने सहन कराया ना, तो जिन्होंने सहन कराया ऐसी श्रेष्ठ आत्मा को जिसने जिंदगी भर सहन किया बच्चे का, तो उसका उसका हिसाब किताब कब पूरा होगा? सत्य में कहाँ पूरा होगा? कौन लेगा?
जिन्होंने सहन किया,
जिन्होंने सहन किया वो हिसाब किताब पूरा करेंगे, और जिसने सहन किया वो हिसाब किताब लेगा, और जिन्होंने सहन कराया उनको हिसाब किताब देना पड़ेगा।
लास्ट क्वेश्चन, ब्रह्मा बाबा के कितने बच्चे थे?
है?
ब्रह्मा बाबा को कितने बच्चे थे?
ब्रह्मा बाबा को कितने, 2 बच्चे थे और एक दो
बेटी,
एक बेटी थी, 2 बेटियां थी,
बेटी 2 थी।
एक निर्मल शांता दादी
और शादी हो गई।
2011 में हम यहाँ गए थे तो बोल रहे थे सेवाधारी जो सेवा का वो देते हैं वो बोल रहे थे कि वो ब्रह्मा बाबा की बेटी हॉस्पिटल में एडमिट है आप सेवा के लिए जाएंगे तो वो फिर कौन थे
वही होगी जो दूसरे थी
निर्मल शांता का
निर्मल शांता तो उधर माउंट आबू में रहते थे
नहीं कलकत्ता में थी
उस टाइम में वही थे
उस टाइम
2011 में वही थे
उस टाइम
वरदानी भवन में
तो दूसरी बेटी होगी बोलो बोलो बोलो
सारा जी जैसे बताया ना कि लक्ष्मी जब आएगी तो जगदम्बा से ज्ञान लेगी जगदम्बा माँ से ज्ञान लेगी लक्ष्मी जब आएगी
परंपरा जो पड़ी है दुनिया में कि जो सास है वो बहू को गोद घर में जाती है तो यहाँ तो सास ये जगदम्बा हुई ना वो लक्ष्मी की ज्ञान धन से झोली भरेगी ना
हाँ, लेकिन फिर बाबा ने मुरली में ऐसे क्यों बोला कि लक्ष्मी नारायण से ज्ञान धन लेकर के दूसरों को बांटती है
बाद में
मतलब लास्ट की बात है मतलब बाद में आने के बाद ज्ञान लेने के बाद में बांटती
ज्ञान लेना कोई बहनों ने किसी भाई ने ज्ञान दे दिया तो उससे ज्ञान की संपूर्णता थोड़ी होती है ज्ञान की संपूर्णता तो तब ही जब हमें निश्चय बैठ जाए बाप के ऊपर कौन है बाप तो बाप से लेना वो अलग बात है और भाई बहनों से लेना वो अलग बात है। लक्ष्मी को धन मिलता कहाँ से है जो इतना बांटती है
नारायण
से मिलता है जगदम्बा ने जो ज्ञान दिया है वो ऊपर ऊपर का ज्ञान दिया या बाप की पहचान दी खुद ही नहीं बाप को जानती है तो उसको फॉलो करे प्रैक्टिकल ज्ञान तो जगदम्बा में नहीं है
तो फिर उनको वो प्रैक्टिकल बाप की पहचान देने वाला कोई दूसरा होगा या फिर
बाप की तो पहचान उसको पहले से ही है तो कोई है नारायण का पाठधारी लेकिन ज्ञान नहीं है
जैसे अभी बाबा ने बताया ना कि जो राधा कृष्ण है वो 60 साल में गद्दी पर मतलब उनको राजा ही मिलती है तो उस समय लक्ष्मी नारायण वाली आत्माओं की एज कितनी होगी लक्ष्मी नारायण वाली आत्माओं की एज कितनी होगी
एक सीट
एज उम्र
60 साल हुई ना
नहीं लक्ष्मी नारायण वाली आत्माओं की
नरसिंह नारायण बनने वालों की होगी ना
मना
जो बच्चे है वो पहले बच्चा बुद्धि है न फिर बड़े होंगे तभी तो उनको बाप का वर्षा मिलता है फिर पैदा होते ही बाप का वर्षा मिल जाता है
बड़े होने के। मेरा प्रश्न है कि उस समय लक्ष्मी नारायण वाली आत्माओं की उनकी तो 60 साल एज रहेगी तो लक्ष्मी नारायण वाली आत्माओं की कितनी रहेगी
तुम लक्ष्मी नारायण किसको समझती हो नर नारायण को लक्ष्मी नारायण समझते हो फिर
बाबा जिसे बोले कि पपीते का उदाहरण माना वाइब्रेशन से परिवर्तन होगा लेकिन जो
परिवर्तन होगा नहीं वाइब्रेशन से जो मादा पपीता का वृक्ष है वो गर्भ धारण कर लेगा पपीते पैदा करने के लिए
इसी शरीर से जो कंचन काया बनेंगे उसके लिए कुछ प्रैक्टिकल उदाहरण क्या तितली का ऐसे दे सकते
कंचन काया आत्मा जब संपन्न बनेगी बीजू की स्टेज धारण करेगी उसके बाद ही तो बनेगी शरीर की परिवर्तन होगा कि स्थूल शरीर का स्थूल 5 तत्वों का परिवर्तन पहले होने लगेगा प्रकृति पहले पावन बनती है या आत्मा पहले पावन बनती है प्रकृति पहले पावन बने
बाबा वो अभी जो अमृत वेले ऑडियो चलता था ना अमृत वेले पहले ऑडियो चलता था ना तो वो बंद कर दिया गया
ऑडियो बंद कर दिया गया ऑडियो
ऑडियो सवेरे चलता था ना
सुबह का क्लास
ऑडियो अमृत वेले ऑडियो चलाते थे ना
नहीं तो ऑडियो क्लास
ऑडियो क्लास जो चलाते थे तो वो बंद कर दिया गया फिर बोला गया कि जब बैठकर सुनेंगे तो ही चलेगा और नहीं तो अमृत वेला तो सेवा का समय होता है तो हमारा तो सहज राजयोग।
ऑडियो लगाने सुबह 2 बजे उठ करके सेवा करना शुरू कर देते हैं।
4 बजे ऑडियो चलता है ना, ऑडियो तो 3 से 4 या दृष्टि लेते हैं, फिर 4 बजे ऑडियो चलता था। तो फिर बोला गया कि जो बैठ के सुनेंगे तो ही ऑडियो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा।
किसी की इच्छा नहीं है, नहीं बैठता है, सो जाता है तो क्या करेंगे।
नहीं बाबा,
वो तो आपने अलग अलग है अपना अपना सबका। दो उस कमरे में बैठ के सुन रहे हैं, इधर दो सो गए, तो इनके लिए नहीं चलेगा, उनके लिए चलेगा।
ऑडियो
तो एक ही जगह से चला
है, सबको बैठ के सुनना है।
वो तो जैसा नियम बन जाए, जरूरत के मुताबिक वैसा करें।
परंतु हमारा तो सहज राजयोग है ना, चलते फिरते याद करना है, सुनना है।
तो अमृत वेला चलना, चलो फिर छत पे चलेगा।
नहीं नहीं मना, सुबह तो सेवा भी होती है, सुबह तो बहुत सारी सेवा।
जो सुबह को सफाई करने वाले हैं वही तो सफाई करेंगे, सब थोड़ी करेंगे।
तो मना काम करते हुए भी तो सुन सकते है ना।
और सवेरे को क्या काम करोगे? 2 बजे
से सफाई रहता है, और भी
सब थोड़ी सफाई करते हैं।
मैंने सबका तो अपना अपना
सफाई करने वाले तो 1-2 होते हैं, 2-4 होते हैं, बड़ा मकान है तो 8-10 होंगे। सब थोड़े ही करेंगे, वहाँ तो 250 200-250 लोग रह रहे हैं।
एक के चक्कर में सारे गए?
कहाँ चक्कर में सारे गए,
माने जैसे कि चलो 2-4 लोग सेवा में है तो फिर जो लोग फ्री है वो तो सुन सकते हैं। माने ऑडियो चलाना है कि नहीं चलाना है, वही सीधी।
तो जैसा प्रोग्राम होता है, जैसा समय होता है, जैसे व्यक्ति होते हैं वैसे काम किया जाता है। उसको उलट पुलट कर सकते हैं, कोई जरूरी फिक्स नहीं है। तुम्हें तो अच्छा लगता होगा सवेरे को ऑडियो सुनना, याद में रहना अच्छा नहीं लगता होगा?
नहीं, 3 से 4 याद होती है ना बाबा। 3 से 4 अमृत वेला दृष्टि लेते हैं।
दृष्टि लेते हैं, दृष्टि क्या लेते हैं, दृष्टि होती है कोई?
अच्छा कुछ भी नहीं करते तो ऑडियो तो 4 बजे से चलती है ना।
हाँ चलाते हैं तो चलती है, नहीं चलाते
वही, वही चलाना है कि नहीं चलाना है।
इच्छा हो चला तो चलाओ, सबकी इच्छा ना हो मत चलाओ।
मना जैसे इच्छा होगी तो चला सकते,
चलो
ठीक।
लेकिन सबकी इच्छा एक जैसी होगी क्या?
नहीं चाहते अभी ना, मेरा ऊपर से फोन आया था कि मना ऑडियो नहीं चलाना है, सुबह श्लोक चलाना है, ऐसा बोला है। क्योंकि श्लोक चलाना है और ऑडियो नहीं चलाना है, क्योंकि सभी लोग सेवा करते हैं ना, तो कोई बैठता नहीं है, तो इसलिए बैठने के लिए किसी को टाइम नहीं रहता।
दुनिया जो है, दुनिया के अंदर ये छाप बैठी हुई है, क्रिश्चियंस के अंदर ये छाप बैठी हुई है, जो भी पढ़े लिखे हैं, कि हमारी बाइबल में उतना ज्ञान नहीं है जितना गीता में ज्ञान है। अंग्रेज और मुसलमानों की वो मुसलमान और क्रिश्चियन वो इस्लामियों की बुद्धि में बैठा है कि भारत का जो धर्मशास्त्र गीता है उसमें जितना गहराई ज्ञान है रूह का, उतना गहराई का ज्ञान कुरान में नहीं है। तो सारी दुनिया लोहा मानती है आज गीता ज्ञान का। अब हिंदुस्तान में तो गीता ज्ञान बहुत ज्यादा है, ज्यादा लोगों को ग्रास्प हो सकता है। तो जब सेवा होगी सारी दुनिया की, तो कौन से ग्रंथ के आधार पर तुम उनको समझा सकोगे? वो उनकी बुद्धि में तो नहीं बैठा है कि भगवान आया हुआ है। तुम बोल रहे हो कि भगवान आया हुआ है और वो भगवान गीता ज्ञान सुना रहा है, तो टैली करने के लिए उनका तो, उनका तो विश्वास जो है धर्मशास्त्र के ऊपर है ना। और ये भी मान्यता रही है ऋषियों मुनियों की और विद्वानों की, भगले भगवान उतर जाए उतर आए, लेकिन हम शास्त्रों को नहीं छोड़ेंगे। तो कौन सा शास्त्र है जिसको नहीं छोड़ेंगे? उस शास्त्र के आधार पर समझना पड़े, समझाना पड़े। इसलिए अगर सेवाधारी बनना है, सारी दुनिया का विश्व सेवाधारी बनना है, तो गीता के श्लोकों के आधार पर किसी को समझाएंगे तो उनकी बुद्धि में बैठेगा। ये दुनिया का सर्वोपरि ग्रंथ है, इसकी सबसे ज्यादा टीकाएं हुई है। बाइबल की और कुरान की इतनी टीकाएं नहीं हुई है, गुरु ग्रंथ साहब की इतनी टीकाएं नहीं हुई है। तो इतनी टीकाएं जो गीता की हुई हैं, उनमें सच्ची कौन सी है? सारी टीकाएं एक दूसरे से टकरा रही है, ज्ञान के पॉइंट क्रॉस हो रहे हैं। तो
वो मान्यता है कि जिस कवि ने कविता लिखी है वो कवि ही आकर के उसका जितना गहराई से अर्थ समझाएगा। तुलसीदास ने लिखी रामायण, वाल्मीकि ने वाल्मीकि रामायण लिखी, तो वाल्मीकि की आत्मा जितना गहराई से समझा सकेगी दूसरा कोई समझा सकेगा? समझाएगा? व्यास ने व्यास प्रसादा, व्यास ने गीता, व्यास के प्रसाद से हमको गीता गया, गीता के श्लोक मिले, तो अब वो व्यास वाली आत्मा ही निमित्त बने सुनाने के लिए, टीका करने के लिए, उसकी व्याख्या करने के लिए, वही व्याख्या तो सच्ची होगी। तो प्रजापिता वाली आत्मा वही व्यास की आत्मा होगी। जिसका नाम भारत पड़ता है, भाव माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला, आदि से अंत तक ज्ञान की रोशनी में ही लगा रहता है, सत्य में प्रैक्टिकल में ज्ञान की रोशनी में, आत्मिक स्थिति में, द्वापर युग से स्थूल रूप में शास्त्र लिखता है, बाद में उन जो वेद वेदवाणी निकली उसके व्याख्या करता है, उपनिषद बनते हैं, ब्राह्मण बने, शतपथ ब्राह्मण वगैरह बने, आरण्यक बने, बाद में ये शास्त्र बन गए, पुराण बन गए, तो ये भी लिखने वाला कौन है? सात्विक रूप में लिखने वाला, शुरुआत वो करता है, फिर बाद में रामायण जैसा, ये जो बाबा ने कहा उपन्यास जैसा बन जाता है। तो ज्ञान की रोशनी में रत रहने वाला हुआ ना जन्म जन्मांतर, कभी प्रैक्टिकल में कभी शास्त्र के आधार पर। तो गीता को ज्यादा महत्व देना, उसको समझना, उस गीता के आधार पर फिर दूसरों को बाबा के महावाक्य सुनाना कि ये असली चीज है, जैसे धर्म पिताओं ने आकर के ओरली सुनाया, कोई ग्रंथ लिख करके थोड़े ही दिया धर्म पिताओं ने, क्राइस्ट ने कोई बाइबल लिखी क्या? इब्राहिम मोहम्मद ने कोई कुरान लिखी क्या? वो तो बाद वालों ने लिखी है, उन्होंने तो मुख से सुनाया ना जो कुछ सुनाया। तो ऐसे ही भगवान जो अभी सुना रहा है वो मुख से सुना रहा है, और ये जो गीता है जो मनुष्य लिख लिख करके प्रिंट करके डाल रहे हैं वो मनुष्यों का लिखा हुआ है। भगवान को शास्त्र बनाने की और शास्त्र पढ़ने की क्या दरकार? तो लोगों को विश्वास बैठेगा ना कि गीता में जो बातें चली आ रही है 2500 साल से,
तो
गीता के श्लोक, गीता के श्लोक तो सब छोड़ चुके हैं, कोई गीता नहीं पढ़ता अभी, रामायण फिर भी पढ़ते हैं। तो जो असली चीज है वो तो शास्त्रों में भी असली चीज गीता ही है ना, वेदों से भी पहले बाबा ने कहा कि गीता लिखी गई, तो जो गीता के श्लोक हैं वो याद होने चाहिए ना, इसलिए चलाए गए हैं कि रोज रोज सुनेंगे, रोज रोज सुनेंगे तो कुछ न कुछ याद ही हो जाएंगे।
मैंने एक आध दिन वो चला, मैंने गैप कर करके जैसे एक दिन वो चला दी।
आपको नहीं इंटरेस्ट है?
नहीं इंटरेस्ट,
तो आप अलग से पढ़ सकते हैं।
नहीं इंटरेस्ट तो है,
आप थोड़े तो पढ़े लिखे हैं ना,
मगर तो वो ऑडियो नहीं सुनी ना बाबा।
जो ऑडियो आपने नहीं सुने हैं वो क्लास में चलाए जा रहे हैं ना, पुराने पुराने ऑडियो शाम को सुनो।
अरे नियम जो है ना हर मधुबन में कर दिया कि सुबह ऑडियो नहीं चलाना, इसलिए।
बात ये है कि जैसे दुनिया में जो सरकार चल रही है उसके तीन विभाग हैं, एक न्यायपालिका, एक विधान पालिका, एक कार्यपालिका। तो अलग अलग निबंधनों जो संचालन कर रहे हैं वो कार्यपालिका के अंदर हो गए, कार्य कर रहे हैं, समझाना दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, शुद्ध हाथों शुद्ध भोजन दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, ये कार्यपालिका होगी। अब विधान पालिका है, विधान कौन बनाता है? ऐसे करना है, वैसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। ईश्वरीय मत के अनुसार अगर उन्होंने कोई संचालन करने के लिए तरीका बना दिया तो उसको अपोज थोड़ी करना चाहिए, उसके अनुसार चलना चाहिए। अपोज करने से क्या फायदा, ऐसा क्यों है, चार बजे क्यों अव्यक्तवाणी चलती थी वो क्यों बंद कर दी, व्यक्तवाणी क्यों बंद कर दी, ऑडियो क्यों बंद कर दिया, पहले गीता का उतना क्लैरिफिकेशन नहीं निकला था ना संस्कृत वाली गीता का, अभी तो संस्कृत वाली गीता का क्लैरिफिकेशन निकल गया ना हिंदी में श्रीमद के अनुकूल, तो उसका महत्व तो ज्यादा बढ़ गया। अब महत्व तो बढ़ गया लेकिन उसको प्रैक्टिकल में लोगों के ऊपर असर तो तब पड़ेगा ना, घड़ी घड़ी हम जो बात बोलेंगे ये बाबा ने जो बात बताई है गीता में भी लिखी है, उनको विश्वास नहीं होगा। आप इस श्लोक का सुना देंगे, देखो गीता का ये श्लोक है, तो उनको ज्यादा निश्चय बढ़ गया, बात सही है, पंडिताई का असर बैठ जाता है। तो इसलिए गीता सवेरे को चलाई जाती है शांति के टाइम, सबको सुनने को मिलेगी तो कुछ न कुछ गीता के श्लोक याद ही हो जाए। अब कोई इंटरेस्टेड नहीं है तो उनको याद नहीं होगी। मुरली की सुनी हुई बातें हैं और वो कोई सुनना ही नहीं चाहता, दुनिया वाले सुनना चाहते हैं तुम्हारे बाबा की मुरली, फिर वो तुम्हारे तक सीमित रहेगी।
अपनी पत्नी को मार डाला वो मुरली में आया
हाँ,
तो
किस आत्मा का मतलब किस आत्मा का पात्र मना बड़ी मम्मी की तरफ होता है सारा
अनुमान हुआ ना, बाबा ने तो नहीं बताया।
वैसे बाबा शंकर पाया तो क्लियर करने के लिए
है,
क्लियर करने के लिए पूछा शंकर पाया तो
हाँ प्रूफ चाहिए ना।
भाई के कोई प्रश्न नहीं है, आपके कोई प्रश्न नहीं है?
भाई परम नाम वासी हो गया बाबा के पास आते
पूछिए ना
क्या
प्रश्न
ब्रह्मा बाबा ने ब्रह्मा बाबा ने बताया लिखा है 18 जनवरी को 18 जनवरी 69 को शरीर छोड़ा इधर शिव बाबा किस तन पर आया था,
किस तन में आया, तो आपने भट्टी में जाकर के वहाँ क्या निश्चय पत्र लिखा, कंपिल में आपने निश्चय पत्र क्या लिखा?
नहीं नहीं इधर आए थे राम बाप के बच्चे की शरीर में आए थे, स्पष्ट नहीं है कि वो 6 मार्च 6 मार्च ऐसी तो जानते हैं दिसंबर में इधर राम बाप शरीर प्रत्यक्ष हुए यही जानना चाहते हो कि जब जाने खाते शरीर छुप गया इधर शिव बाबा इधर आ गया तुरंत या कुछ दिन के बाद
देखो बच्चा पैदा होता है तो पहले ही होता है पेट में या चैतन्य बच्चा होता है पहले 3-4 महीने में
चैतन्य
होता है
नहीं पेट में होता है की गर्भ में
हाँ गर्भ में बच्चा है 3-4 महीने तक चैतन्य होता है माने आत्मा है उसमें
नहीं नहीं 4 महीने तक नहीं है
आत्मा नहीं जड़ होती है ना ऐसे ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद जो शिव की आत्मा है उसको आने में टाइम लगेगा जिसमें आएगा वो पहले शरीर
तैयार है
हाँ तो 9 महीने निकाल दो 9-10 महीने
क्या
18 जनवरी का 10 महीने निकाल
कौन सा समय, कौन सा महीना है? नवंबर
नवंबर
नवंबर में आई हुई।
हाँ इधर से मालूम है।
69 से और बाबा जो
खाली वहाँ रहा माता में नहीं आते थे?
हाँ आते थे बाबा।
फिर कितना रह गया 10 साल खाली रहा?
माता में तो बाबा पहले आते थे ना 41-42 के आस पास।
तो उसने प्रजापिता ने पीयू ने शरीर छोड़ा है।
हाँ 69 के बाद तो बाबा चली नहीं ना मुरली। जब बाबा राम बाग में आए तो
मुरली हसना चलती रही, तो जरूरी है।
ये कोई जरूरी नहीं बाबा
कहते हैं एटम बम फटेंगे दुनिया, 7 दिन के अंदर दुनिया का खलासा होगा, तो उस समय कोई मुरली सुनेगा? चलान सुनाया गया
वो जो संदेशियां जो संदेश लेकर जाती है, तो सिर्फ वो सेवा सिर्फ माताएं नहीं करती है, संदेश ले जाने का सेवा केवल वो बहने ही करते हैं। नहीं जो संदेश लेने की सेवा है, जैसे वतन में जाती है ना संदेश लेकर, तो वो सिर्फ बहन ही करती है।
हाँ दोनों का एक ही
कोई त्रास आया होगी पूर्व जन्म में।
अच्छा भाई लोग भी जा सकते
हैं? भाई लोग भी जा सकते
सीतरी में।
जो भी पूर्व जन्म की पवित्र आत्माएं होंगी या इस जन्म की पवित्र आत्माएं होंगी वो साक्षात्कार में जाएंगी। भावनावादी होती है, बुद्धिवादी नहीं होती।
बात यह आती है कि दरी गुजरात ट्रांस मैसेंजर था, दरी गुजरात आसमंजर ज्यादा था, ऊपर समर्थन में ब्रह्मा बाबा को देखता था सफेद, और जब धरती में आया तो कहा इधर जैसा रिकार्ड थे कि मैंने आपको समर्थन में देखा, इसका राज क्या है?
जो भूत प्रेत आत्मा है वो धरती पे नहीं, वो सिर्फ प्रवेश करने के लिए धरती पर आती है। बाकी उनकी ऊंची स्थिति होती है, सूक्ष्म स्थिति, सूक्ष्म चीज होगी वो ऊपर रहेगी नीचे आएगी, प्रथम ही नीचे है,
आकाश ऊपर है वो सूक्ष्म है।
बाबा लोगों का ऐसा सवाल होता है कि हम दूर, हम तो देर से आए बाद में आए, तो क्या हम क्या कर सकते हैं? हम आप लोगों का बराबरी नहीं कर सकते, हम तो पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ सकते, ऐसा मतलब उनके मन में शंका ऐसी कुछ बात रहती है, तो उनको कैसे संतुष्टि दिलाना, उनको क्या समझाना?
तो हमारे बाबा ने तो बोला है लास्ट में आएंगे वो फर्स्ट जाएंगे।
मैंने बोलते हैं कि हम तो देर से आए, कहते हैं कि हम तो देर से आए, तो हमको तो कुछ पता नहीं, हमने पढ़ाई भी नहीं पढ़ी।
उनसे पूछे तो मैं तुम्हारी एज क्या है?
अच्छा
पूछो
तो
क्या एज बताएंगे?
अरे 50-60 बताएंगे,
70-60
बताएंगे,
70 साल बताएंगे।
हाँ।
तुम्हारे यज्ञ को हो गए 78 साल, तो बता नहीं सकते, ये तुम नेगेटिव संकल्प क्यों करते हो? हम देर से आए पूर्व जन्म में, तुम अगर तुमने जन्म लिया हो और ज्ञान में चल ब्रह्मा कुमार कुमारी हो बने रहे हो हैदराबाद में, तो ये भी तो हो सकता है। हम लेट क्यों आए? लेट आए लेट छोड़े आए, तुम तो सबसे पहले आए थे, उनका वंश सा बढ़ाओ।
चित्रों में ना बाबा शंकर के कमर में ना जैसे बैंड बाजी वाले होती ना, तो तुरुण तुरुण से जो बजती है फी फी से कहते हैं तुरुण है, तो वो भी उनके लटकी होती है कमर में, तो किसकी यादगार है?
किसकी यादगार है? शंकर जी बोलते हैं ना।
अच्छा उसकी याद
सबसे ज्यादा भाषण कौन करता है ज्ञान का? शंकर जी करते है ना, तो वो तुतुड़िया ही तुतुड़िया बजा रहे, कोई फल निकलता है?
और कई बार छोटी छोटी घंटी की लटकी
है,
छोटी छोटी घंटी सी भी लटकी होती है,
ज्ञान की घंटरिया बजाते रहते हैं।
है नगाड़ा तो नहीं बजाया, सारी दुनिया में आवाज फैल जाए, संपन्न बनेंगे तब नगाड़ा भी बजेगा, अखबार भी बोलेंगे, टीवी भी बोलेगा, रेडियो भी बोलेगा, दुनिया में चारों तरफ से आवाज ही आवाज हो जाएगी, जैसे नगाड़ा दूर दूर तक आवाज फैलाता है।
बाबा वो किसी का सवाल है तो
हम नहीं कहेंगे तुम्हारा सवाल है किसी का ही हो।
माता जी ने पूछा था कि जैसे एक बाप दूसरा न कोई
है?
जैसे कहते हैं एक बाप दूसरा न कोई, सिर्फ एक बाप को ही याद करना, तो माता जी बोलते हैं कि अगर जैसे एक बाप दूसरा न कोई है तो एक पत्नी दूसरा न कोई, तो एक ही पत्नी होगी तो दुनिया में कला कलेश तो नहीं होगा ना।
ठीक है,
तो उसका क्या राज है?
यही राज है, ये पवित्रता है संकल्प में एक के साथ भाव।
तो परंतु ऐसे तो होता नहीं,
ऐसा होता क्यों नहीं? लक्ष्मी नारायण का कैसे होता था, राम सीता का कैसे होता था?
परंतु
सीता को रावण इतने साल 14 साल चुरा के ले गया तो उनका कैसे होता था? उनका श्रद्धा विश्वास पत्नी के ऊपर से हट गया, या पत्नी का सीता का श्रद्धा विश्वास पति के ऊपर से हट गया?
नहीं, वो तो अड़िग रहा।
तो फिर ये नहीं हो सकता ऐसे आपने कह दिया।
परंतु ये जो अभी अच्छा द्वापर से ऐसे होने लगा,
द्वापर में भी जो पार्वती का पार्ट है लक्ष्मी का पार्ट है वो ऐसा ही पार्ट है, वरुण संपूर्ण त्रिवंग कुमारी। क्या
तो ये जो घर घर में ऐसे डबल डबल कर ले रहे तो फिर घर में इतनी कला कले से हो रही है, परिवार बिखर जा रहे हैं।
हाँ तो कन्वर्ट होने वाली आत्मा होंगी तो ऐसे करते होंगे।
अच्छा ये राज है कन्वर्ट वाली करते है, है?
हाँ क्या कह रहे थे? बुरे
कुछ पूछ रहे थे
आप कुछ कह रहे?
अच्छा मैं तो पूछ लिया ना, अभी वही बात है आपने बता दी। अच्छा। वही एक पत्नी होगी तो फिर ऐसा नहीं होगा घर में। कई कई माताएं ऐसे रोती है बोलती है ये तो आदि से चला आ रहा है,
आज इसे चला आ रहा है। झूठ क्यों बोलते हैं? सुन सुनाई बातों में सब पर विश्वास करना जरूरी है। माताएं बोलती हैं, पिताएं बोलते हैं, बहन जी बोलती, भांजा बोलता है।
वो बोलते हैं आदि में भी तो दो पत्नियां थी तो
वो बोलते हैं तो वो सही बोलते हैं क्या?
नहीं माना, हम तो समाधान तो हमारे पास होना चाहिए ना।
हमारा समाधान होना तुम्हें नहीं पता समाधान? लक्ष्मी नारायण अकेले थे और आपस में एक दूसरे से मिलते थे और किसी से नहीं मिलते थे। राधा कृष्ण का चित्र नहीं तुम्हारे पास? राधा की दृष्टि कृष्ण में डूबती, कृष्ण की दृष्टि राधा में डूबती।
तो वो द्वापर से दैत्य द्वैत युग आया तब से फिर कन्वर्टेड होने वाली आत्माएं ने ये शुरू कर दिया।
हाँ जी, तो उन्होंने आके दूसरी बातें शुरू कर दी। नहीं 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 नहीं, वाइब्रेशन से या ज्ञान इंद्रियों से कोई संतान पैदा नहीं हो सकती। उन्होंने दूसरा अपना ज्ञान सुना दिया। ये तो काम इंद्रिया है या भ्रष्ट इंद्रिया है, उन्हीं से संतान पैदा होगी, उसी से सृष्टि बनेगी। तो द्वैतवाद फैला दिया ना
बाबा,
उनके चंबे में आ गए भारतवासी।
एक बार ना बाबा आकाश में दिखाते ना
क्या
तारों का क्वेश्चन मार्क से बना हुआ दिखता है?
क्वेश्चन मार्क?
हाँ, जैसे तीन सितारे दिखते मावलैंड में या सप्तऋषि दिखते हैं, ऐसे ही सात तारों का एक क्वेश्चन मार्क से दिखाई देता है।
होता होगा
तो वो किसका मतलब?
ज्यादा क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन करते होंगे अति के क्वेश्चन करते होंगे, उनके क्वेश्चन समाप्त ही नहीं होते। भगवान की प्रत्यक्षता हो जाती है तब तक उनके प्रश्न ही समाप्त होते।
और जो दिखाते बाबा शास्त्रों में नक्षत्र दिखाते हैं 27, तो 12-12 जो सूर्यवंशी और 12 चंद्रवंशी, तो 3 मतलब बुध और कृष्ण,
इस इनका जो बीज थी इनको मिला के 27 नक्षत्र कहीं ना या और कुछ है बाबू
तीन त्रिमूर्ति नहीं है
तीन मूर्ति
नहीं नहीं हो गया